ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप ने हम बच्चों का कल्याण किया। हम सभी का जीवन विश्व सेवा में लगा दिया। हम सभी के जीवन में ऐसा परिवर्तन किया जो हम भोगी से योगी बन गए, औरों को योगी बनाने के लायक बन गए। बाबा ने आकर के हम बच्चों के ऊपर रहम किया, हमें यथारथ रास्ता बताया। जो हम ठोकरें खा रहे थे हमें ठिकाने पर लगा दिया। अभी बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे, मैंने तो तुम्हें ठिकाने पर लगा दिया, भटकने से छुड़ा दिया, अभी तुम्हारा काम है औरों को छुड़ाना। आज भी बाप दादा की जब मुरली सुन रहे थे तो बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को हमारी ड्यूटी याद दिला रहे थे कि बच्चे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बनाने की, कांटों को फूल बनाने की, सबको यथारथ रास्ता बताने की, क्योंकि तुम उस रास्ते के ऊपर चल रहे। कल्याणकारी वही बन सकता है जिसका खुद का कल्याण हुआ है। जब तक हमारा कल्याण नहीं हुआ था तभी तक औरों के कल्याण के लिए हम सोच नहीं सकते थे, परंतु जब बाबा ने आके हम बच्चों का कल्याण किया और कल्याण करने की हमें विधि बताई कि आज किसी का भी कल्याण करना होगा तो उसके लिए एक सरल उपाय बाबा ने बताया कि बच्चे, उसके लिए तुम्हें निर्माणता का गुण धारण करना पड़े, क्योंकि आज सारी दुनिया विषय विकारों के ग्रत में गिरी पड़ी है, उनको निकालना ये तुम्हारा काम। आपको अनुभव है जब हम रास्ते में से जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति रास्ते पर चलते चलते गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए हमको झुकना पड़ता है। आप सीधा टाइट होके उसको हाथ दो तो वो नहीं उठ सकता है, आपको झुक के उसको हाथ देना पड़ता है तभी वो उठ के खड़ा हो सकता है। तो वैसे ही सर्व मनुष्यात्माएं आज दुख अशांति में गिरी पड़ी है, विकारों में गिरी पड़ी है, इनको उठाने के लिए हमें उनके ऊपर रहम करना पड़ेगा। इन आत्माओं का कल्याण करने के लिए हमें खुद को झुकना पड़ेगा, निर्माण बनना पड़ेगा। जो निर्माण है वही विश्व का नव निर्माण कर सकता है। जब तक निर्माणता नहीं आती है तब तक कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। आज भी बाबा कह रहे थे कि बच्चे, तुम सब इस विश्व के सर्वेंट हो, क्योंकि बाबा हमेशा खुद को क्या कहलाता है, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। ओबीडियंट माना आज्ञाकारी। इतनी बड़ी आशा में अलमाइटी अथॉरिटी, परंतु हम बच्चों को कहता कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तो हमें ऐसा लगता है देखो इतना बड़ा बाबा कितना निर्माण और कितना निरंकारी निराकारी। तो जैसा बाबा निराकारी निरंकारी होने के कारण, निर्माण होने के कारण आज हम सभी का कल्याणकारी है, सारे विश्व का कल्याणकारी है, वैसा ही हमें भी सर्व का कल्याणकारी बनने के लिए निरंकारी निराकारी स्थिति में रहने की आवश्यकता। क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो भी मनुष्यात्माएं हैं, इन सभी के हम पूर्वज, बाबा ने हमारा स्थान बहुत ऊंचा रखा है। आप कल्प वृक्ष का अगर चित्र देखेंगे तो ब्राह्मण कहां बैठे हैं, कल्प वृक्ष के मूल में बैठे हैं। और मूल का काम क्या होता है, सारे पेड़ को जल खाद सब कुछ पहुंचाना। तो हम ब्राह्मण इस कल्प वृक्ष के मूल में बैठे हैं, हमारा काम है सर्व विश्व की आत्माओं को सुख शांति शक्ति प्रेम ईश्वरीय प्राप्तियां ये सब हमें उन तक पहुंचानी है। पूर्वज जो होते हैं उनको हमेशा ये ख्याल रहता है कि हमारी बिरादरी सदा सुखी रहे, सदा फली फूली रहे। तो बाबा ने इसीलिए हमको कहा कि तुम पूर्वज हो तो तुम्हें सारी बिरादरी का, सारे मनुष्यों का तुम्हें ध्यान रखना। क्योंकि बाबा ने अपना बना करके हम बच्चों को हद में से बेहद में ला दिया कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं और भाइयों का उद्धार करना यह हमारा काम है, आत्माओं का उद्धार करना हमारा काम है, उनको कल्याणकारी रास्ता बताना यह हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस समय हमें ये स्मृति आती है तो सर्व देह और देह की जो भी हदें हैं वो टूट करके हम बेहद में खड़े हो जाते हैं और सर्व आत्माओं के ऊपर दया की रहम की दृष्टि जाती है। साकार बाबा को हमने देखा, बाबा ने विश्व कल्याण के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। बाबा ने जब त्याग किया तभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, किसी का भी ख्याल नहीं किया, परंतु एक धक से वो बेहद के बाबा का बन गया। और जब बाबा ने मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया तो बाबा को देखने के बाद अनेक भाई बहनों ने भी अपना जीवन ईश्वर के हवाले कर दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया। बाबा हम सभी के आगे एक आदर्श, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने हमें प्रैक्टिकल में करके बताए। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे जिसका हाथ ऐसा, पहला पुरुष को मिले, पहला टर्न उसको मिले। बाबा का हाथ सदैव ऐसा था, बाबा की मुट्ठी कभी बंद नहीं थी, चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन। ब्रिजेंद्रा दादी बताती थी बाबा भक्ति मार्ग में भी बहुत बड़े दानी थे, बाबा ने कभी दान में पीछे नहीं देखा। हमेशा बाबा ने दुखी आत्माओं को, जिनको आवश्यकता है उनको हमेशा बाबा ने सहारा दिया, बाबा ने सदैव उनको मदद किया। उसका कारण यही था कि जो फर्स्ट नंबर वाली आत्मा है श्री कृष्ण की, उसके वो संस्कार दातापन के गए नहीं थे। क्योंकि बाबा का बनने के बाद बाबा कहते मैं तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देता हूं, परंतु वास्तव में देखा जावे तो ये संगम युग जो है ये एक जन्म की प्राप्ति नहीं कराता है, परंतु हमारे पूरे 84 जन्मों की प्राप्ति कराता है। लास्ट तक वो लकीर जाती नहीं है, वो गुण वो क्वालिफिकेशन नहीं जा सकती। तो बाबा ने निराकार बाबा ने विश्व का उद्धार करने के लिए दया की रहम की दृष्टि क्या है उसका अनुभव कराया। बाबा निराकार है, गुणों का सागर है, उसने अपने गुण साकार के द्वारा हमें प्रत्यक्ष रूप में बताए। हम खुद अनुभव करते थे, बाबा से जो भी मिलता था बाबा की दृष्टि लेते ही बाबा के प्रेम में बांध जाते थे। हम बाबा के पास जब पार्टी लेकर के जाते थे, उस समय पर कोई भी बाबा को छोड़ना नहीं चाहता था, वापस जाना नहीं चाहता। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, जवान सब, सबके आंखें भरी हुई होती थी जब जाते थे तभी वापस। बाबा तो बड़ा न्यारा प्यारा रहता था। बाबा बच्चों की बहुत खातिरी करता था, बहुत प्यार देता था, और ऐसे समय पर ऐसा न्यारा हो जाता था जैसा एकदम साक्षी होकर के सारा खेल देखता था। तो बाबा में जो बैलेंस की कला थी, न्यारे और प्यारे बनने की कला थी, इसने आत्माओं का उद्धार किया। कैसा इस देह में रहते देह से न्यारा रहना है, डिटैच रहना है, अलग रहना है, इसका अनुभव बाबा ने हम बच्चों को कराया। शिव बाबा प्यार का सागर है, जिसके कारण सर्व आत्माओं के ऊपर उसकी दया थी, कृपा दृष्टि थी। उसके संग में रहके ब्रह्मा बाप भी वैसा ही बन गया था। हम देखते थे कभी कभी बाबा सारी सारी रात सोते नहीं थे। बाबा से पूछे कि बाबा आज आपको नींद नहीं आई क्या, चक्कर मारता रहे। बाबा कहते थे नींद कैसे आएगी, बांधेली गोपिकाएं बिचारी चिल्ला रही है, रो रही है, बुला रही है, दुखी आत्माएं पुकार रही है, तो नींद कैसे आ सकती। बाबा ऐसे समय पर उन आत्माओं को जिनको आवश्यकता है उनको साकाश देते थे, लाइट और माइट देते थे बैठ के। तो शास्त्रों में जो बताते हैं कि दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां यज्ञ में दे दिया सारी, वो प्रैक्टिकल में बाबा में देखने में आता था। हड्डी देना माने कि अपना आराम का समय भी, जैसा कि बाबा की कोई पर्सनल लाइफ थी नहीं, वो खास विश्व सेवा के लिए ही था, विश्व सेवक था। बाबा के अंदर इतना प्यार था, जो बाबा का प्यार जो है, प्यार के पीछे तो सब दीवाने हो जाते हैं। तो शुरू शुरू की बात सुनाती थी दादी हमें, ब्रिजेंद्रा दादी, क्योंकि उनके साथ रहती थी। तो दादी हमेशा सुनाती थी कि जब माताएं कन्याएं जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, जिनको घर में बहुत बंधन पड़े, वो जब छोड़ करके भाग के बाबा के पास आई, तो किनके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को गोदी में लेके आई, थोड़े बड़े भी थे तो भी बच्चों को लेके आई, भाग के आई। तो सिंध वालों ने बहुत गमसान किया, बहुत कुछ चाल चली उन्होंने, गवर्नमेंट का सहारा लिया, सब कुछ किया, और लाखा भवन को आग भी लगा दिया, पिकेटिंग किया, क्या नहीं किया इन्होंने, सब कुछ किया। फिर भी देखा कि ये कोई भी मुड़ने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, तो उन्होंने लास्ट शस्त्र उठाया, क्योंकि माताओं का तो बच्चों में प्यार होता है ना, मोह होता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से बैठ के आर्डर निकाला कि जो भी 18 बरस से छोटे बच्चे हैं उनको वापस उनके पेरेंट्स के पास भेजा जाए। वो लोग तो बहुत खुश हो गए जब ये ऑर्डर आया। तब तो ऑर्डर बाबा के पास आया। बाबा ने वो जो बाबा के अनन्य बच्चे थे जो भी यज्ञ संभालते थे उन बहनों को बाबा ने बुलाया, दादियों को बुलाया। अभी दादी कहते थे, हम उस समय बहन कहते। उनको बुलाया कि ऐसा ऐसा ये संबंध आया है तो इन सब बच्चों को वापस भेजना पड़ेगा। अभी ये तो बहुत डिफिकल्ट बात थी कि उनको बाबा से छुड़वा करके वापस भेजना, बहुत कठिन बात थी। कोई तैयार नहीं हो गए छोड़ने को जाने के लिए। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये ध्यान में रखो। उस समय पर गवर्नमेंट ने एक अला बख्श था वहां, वो मिनिस्टर था वहां कराची का, तो कहा कि ये जो अला बख्श है इसके पास बच्चों को लेके आवे और यहां से उनके जो पेरेंट्स है वो बच्चों को लेके जाओ, बीच में अला बख्श को रख। तो आखिर बाबा का ऑर्डर होने के बाद तीन चार बहनों को बाबा ने, दादियों को, बस भर के बच्चों की, क्योंकि अपने पास तो बाल भवन था, बच्चों का स्कूल चलता था, पाठशाला चलती थी, जो भी छोटे छोटे आए तो उनको पढ़ाई तो पढ़ाते थे, उन बच्चों को बस में बिठा करके और अला बख्श के पास लेके आए। बाबा का देखो बच्चों से कितना प्यार। जब भी बच्चों को बाबा ने भेजा, बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं था कि हमारे को कोई निकाल रहे है, यहां से भेज रहे हैं, वो तो समझे हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तो उन सभी को छोटा जैसा मिलिट्री में नहीं पीछे बैग लगाते हैं, उसमें सामान डालते हैं अपना, तो बाबा ने ऐसी छोटी छोटी बैग उनके लिए बनाई, उसमें चार चार ड्रेस डाले उनके लिए, ए टू जेड सब चीज, ब्रश पेस्ट सब जो भी जरूरी चीजें सब डाल करके तैयार करके और उन बच्चों को दिया। उनके लिए एक बिस्तरा भी दिया साथ में छोटा। वो सब बस में बैठे और अला बख्श के पास आए। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो तो बड़े खुश हो गए कि हमारे को बच्चे मिल गए। अभी वो तो गाड़ियां मोटरें सजा सजा के आए, जैसा दुल्हन को लेने को आते वैसा। तो बच्चों को जब भी मालूम पड़ा कि ये हमको ले जाने के लिए आए हैं, तो बच्चों ने बहुत रोदन किया, बहुत रोने लगे। तो छोटे बच्चे तो आपको मालूम है ना, जब भी रोते हैं तभी नीचे लेथड़ी पहनते हैं सब मिट्टी, तो वहां वो लेसड़ी पहनने लगे और वो लोग उनको खींच खींच के लेके जावे। और ये जो दादियां गई इनके तो मन एकदम ये हो गया, ये बच्चों को इतना जबरदस्ती लेके जा रहे हैं और ये तो जबरदस्ती तो बाबा के कहने पर साथ में आई, तो बोला देखा नहीं जाता था दादी, हमको अनुभव सुनाती थी। ये सारा दृश्य देख के अला बख्श के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर क्या हुआ, ये खींच खांच के आखिर पकड़ के, क्योंकि वो तो आए असुर लोग, पकड़ के खींच के ले गए बच्चों, ले गए। तो दो चार दिन के बाद वापस बच्चे भाग करके आश्रम में आ गए बाबा के पास। ये रोते थे और चिल्लाते थे, बाबा बाबा हमको बाबा के पास जाने दो, बाबा के पास जाने दो। तो चार आठ दिन के अंदर ही ये वापस बाबा के पास आ गए। बाद फिर वो लोग गए उस मिनिस्टर के पास, अला बख्श के पास, कि हमारे बच्चे वापस चले गए, अभी हमको लेके दो। उसने कहा खबरदार, अगर तुम लोग आए, तुमने बच्चों को क्या दिया, ये इतना बाबा बाबा क्यों करते हैं, बाबा ने इनको क्या दिया है, बाबा ने इनको इतना प्यार दिया है जो बच्चे उस बाबा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तुमने तो कुछ दिया नहीं इसलिए तुम्हारे पास रहने के लिए तैयार नहीं। भगा दिया उनको, बोला जाओ बैठे रहो। बच्चे छूट करके आ गए, बाबा के बन गए। मतलब बाबा का इतना छोटे बच्चों के ऊपर भी प्यार था, नहीं तो हम लोग छोटों को छोटा समझ के छोड़ देते हैं ना। बाबा ने छोटों को भी छोटा समझ के नहीं छोड़ा, परंतु उनके अंदर ऐसी क्वालिफिकेशन भरी उनके अंदर ऐसे गुण भरे प्यार के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, जो विश्व कल्याण के लिए निमित्त बन गए। आज हमारी दादियां, गुलजार दादी कितनी 12 बरस की थी, 10 12 बरस की, ऐसी छोटी छोटी थी सब, परंतु आज उन्होंने देखो कितना हम सभी का कितना उद्धार किया। आज इतना बड़ा ब्राह्मण कुल किसके आधार पर खड़ा है? बाबा है, परंतु बाबा ने इन बच्चों के द्वारा करा है। तो बाबा प्यार का सागर है, उसने प्रैक्टिकल में करके बताया। बाबा का हर गुण जो था वो साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होता। बाबा बच्चों का कितना ध्यान रखता था हर बात में। तो विश्व का कल्याण करना है तो उसके लिए रहम और स्नेह, इन दो गुणों के बगैर हम विश्व का उद्धार नहीं कर सकते। जब तक हम बेहद में खड़े नहीं होते हैं कि ये सब मेरे हैं, ये सारा परिवार मेरा है, ये विश्व ही मेरा परिवार, ये सारे परिवार का मुझे उद्धार करना है। बाबा ने आज भी कहा ना, तुमको सबको संदेशा देना है। बाप आया तो मैंने कहा देखो लौकिक बाप कहां बाहर से आता है, घर में एक बच्चा होगा, दूसरे खेलने को गए होंगे तो भागता है, बोलते चलो चलो बाबा आया है, बाबा आया, कितना खुश होके उनको बुलाता है। तो हमारा बाबा तो परम धाम से आया है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, सभी को बुलाना चाहिए ना बाबा के पास। क्या हमको इतनी लगन है कि जो भी बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, जो दुखी और अशांत है, उन सभी को सुख शांति मिले। हमने बाबा से वर्षा लिया है तो ये भी लेवे। हम जानकी दादी को देखते थे, लास्ट बरस में भी दादी अव्यक्त होने के समय भी दादी ने कितने चक्कर लगाए सब तरफ। तो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था दादी इतनी मेहनत करती है, इतनी बड़ी आयु में 103 बरस की हो गई और इतनी मेहनत करती है। तो मैंने कहा दादी आप इतना क्यों जाते, हम जाएंगे ना आपके बदले, आप नहीं जाओ, आप क्यों जाते इतना। तो दादी हमारे को समझाती थी, बोला देखो मेरे को एक ही लक्ष्य है कि बाबा ने जो मेरे को दिया है वो मुझे सबको देना। तो ये जो लक्ष्य दातापन का, लेने की बात नहीं, दातापन का जो लक्ष्य, कल्याण वो कर सकता है जिसमें दातापन के गुण होंगे। अगर दातापन की क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो दूसरों को क्या कल्याण करे। सौदा नहीं करो, मेरे को देवे मैं उसको देवे, ये तो सौदा हो गया। परंतु निस्वार्थ सेवा, जब हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होता है तभी हम औरों का कल्याण कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज भी बाबा ने हम बच्चों को बताया कि जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो दो ना, परखने की शक्ति को धारण करो। अगर तुम्हारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है, एक आया बेचारा उसको पानी की प्यास लगी हुई है और तुम उसके आगे 36 प्रकार का भोजन रखेंगे, उसको अच्छा लगेगा खाएगा? उसको तो पानी चाहिए। आज किसी को शांति चाहिए और हम उसको सुख का डोज दे रहे हैं, उसको कैसा मजा आएगा उसको। तो सामने हमको पहचानना चाहिए, जैसे डॉक्टर लोग होते हैं बीमारी को पहचानते हैं, उस अनुसार दवाई देते हैं। तो हमारे अंदर भी वो परखने की शक्ति चाहिए, तभी हम सामने वालों का कल्याण कर सकते। किसी को शक्ति की आवश्यकता है और हम उसको आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं, क्या फायदा है? तो आवश्यकता के अनुसार, बाबा हमेशा कहता था नब्ज देख करके पीछे तुम ज्ञान सुनो। बाबा के ये शब्द नब्ज देख, बाबा कहते थे तुम्हारे में इतना भी अकल नहीं है। अरे बिच्छू में कितना अकल होता है, वो कभी पत्थर को डंक नहीं मारेगा, जो कड़क चीज होगी उसको डंक नहीं मारेगा, नरम चीज को डंक मारता है। तो तुम्हारे में इतना भी अकल नहीं है, ये नरम है या पत्थर है, सामने वाला सुनने वाला कैसा है तुम पहचान नहीं सकते उसको। तुम उसको परख के उसकी नब्ज पीछे उसको बैठ के ज्ञान सुनाओ तो देखो उसका उसके ऊपर असर होता है कि नहीं होता। आज भी बाबा ने कहा ना, सफलता क्यों नहीं मिलती है सेवा में, क्योंकि तुम परखते नहीं हो, पहचानते नहीं हो। पहचान के उसको जिस चीज की आवश्यकता है, जिस गुण की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसको सिर्फ वर्णन नहीं करो पर उसकी अनुभूति करो, क्योंकि सुनी हुई बात भूल जाती है, पढ़ी हुई बात भूल जाती है, देखी हुई बात भूल जाती है, पर अनुभव की हुई बात कभी भूल नहीं सकती। तो इसीलिए तुम अनुभव करना सीखो, अनुभव करो, कराओ दूसरों को। तो जितना जितना अनुभव कराएंगे उतना उतना उनका क्या करेगा, उतना उतना उद्धार होगा। नहीं तो हम देखते हैं सब जगह यही होता है ना, कितने लोग आते हैं साप्ताहिक कोर्स करने को, 7 दिन पूरा होता है तो ओम शांति, फिर तो दिखाई नहीं पड़ते। कोई कोटों में, कोई एकर बेकर, कोई आएगा तो आएगा, पीछे नहीं तो नहीं आते। आप कहेंगे आने वाले ही कोटों में कोई है इसीलिए नहीं आते, वास्तव में हम लोगों की मिस्टेक, हम लोग उनको परखते नहीं है और ऐसा ही उनको डोज देते रहते हैं। इसके लिए क्या होता है, उसकी रिजल्ट कुछ नहीं निकलती। तो रहम करने के लिए भी किसके ऊपर रहम करना चाहिए ये भी अक्कल होना चाहिए। सबके ऊपर रहम करके भी नहीं चलेगा, तुम उसके ऊपर रहम करो जो उस रहम को भी समझ सके कि ये हमारे ऊपर रहम कर रहे। नहीं तो तुम ऐसा ही ज्ञान फेंकते रहो, सुनाते रहो सुनाते रहो, वो ध्यान ही नहीं देवे तुम्हारे ज्ञान की तरफ। किसी किसी को बहुत आदत होती है ना, सबको सुनाते रहेंगे, अरे परंतु देखो तो सही उसको अच्छा लगता है या नहीं लगता। आप गीता भी देखेंगे ना, जो लौकिक में गीता है भक्ति मार्ग की, उसमें भी है कि हे अर्जुन हमेशा दान सुपात्र को करना चाहिए। जो सुपात्र है, लेने के लायक है, उनको दान दो। अविनाशी ज्ञान रतन दान भी उनको देना है। सबसे ज्यादा धन तो कीमती तो ज्ञान रतन। तो इसीलिए देख के अगर हम औरों को जब सुनाते हैं, उनकी नब्ज चेक करके पीछे उनके अनुसार उनको सुनाते हैं, तो उनका हम कल्याण कर सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, अपने अंदर वो रूहानी प्यार, निस्वार्थ सेवा हमारा नाम होना चाहिए। काम उसका है, नाम मेरा कैसा हुआ ये तो बताओ। आज देखो कोई भी दुकान होती है, कपड़े की दुकान है, उसके ऊपर नाम किसका होता है, मालिक का नाम होता है ना, या सेल्समैन का नाम होता है। बेचते तो सेल्समैन है बैठ के कपड़े, कितने वैरायटी बता देंगे आप जाएंगे ना, इतनी वैरायटी बताएंगे, ये लो ये लो ये लो ये लो, परंतु नाम उनका नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनका नहीं है। उनको अगर कपड़ा चाहिए, एक इंच भी उनको कपड़ा चाहिए, तो उनको पैसा देके पीछे खरीद करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार आज बाबा ने इतना अथाह ज्ञान दिया है, जो हम औरों को परोसते हैं, देते हैं वो ज्ञान, परंतु उस ज्ञान को जब तक सिर्फ सेल्समैन बन के देंगे तो कुछ नहीं होगा। उसको जब हम अपना लेते हैं, अपना के पीछे औरों को सुनाते हैं, तभी उसके ऊपर असर होता है। अगर अपनाते नहीं है तो असर ही नहीं होता। भक्ति मार्ग में भी दृष्टांत देते हैं, इसका धृतराष्ट्र का दृष्टांत देते हैं। कहा एक बारी धृतराष्ट्र, ये छोटे बच्चे थे कौरव और पांडव, ये द्रोणाचार्य के पास, उसको गुरु किया था ना, उसके पास पढ़ने के लिए गए। तो उसने पहले दिन को पहला लेसन दिया सत्यता का, कि जीवन में कभी भी झूठ बोलना नहीं, सदैव सच बोलना। और दूसरे दिन फिर सब बच्चों से पूछा, सभी ने रिपीट किया, सब ने याद कर लिया, परंतु जो युधिष्ठिर था उसने बोला, वो चुप रहा, बोला तेरे को लेसन नहीं याद हुआ इतना छोटा। उसने सिर हिलाया। फिर दूसरे दिन फिर पूछा उससे, फिर उसने सिर हिलाया, मेरे को याद नहीं। तो गुरुजी बहुत गुस्सा हो गया उसके ऊपर, बोला कमाल है, इतना छोटा लेसन जिसको याद नहीं है, वो कैसा क्या धनुर्विद्या सीखेगा, कैसा क्या लड़ाई के गुरु सीखेगा, सीख ही नहीं सकता। फिर तीसरे दिन उससे पूछा तो उसने बताया, रिपीट करके बताया जो गुरुजी ने समझाया था। तो गुरुजी ने कहा, तेरे को 3 दिन लग गए ये पाठ पक्का करने में। बोला जब भी आपने ये, युधिष्ठिर ने कहा, जब भी आपने ये लेसन हमारे को पक्का कराया, उस समय मैं कभी कभी झूठ बोलता था और क्रोध भी करता था, फिर मैंने अपने साथ प्रतिज्ञा किया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। तो वो जो प्रतिज्ञा मेरे को जब पक्की हो गई तभी फिर मैंने ये आपको सुनाया कि मेरे को ये पाठ पक्का हो गया कि झूठ बोलना ये पाप। उस दिन द्रोणाचार्य ने उसका नाम धर्मराज रखा। युधिष्ठिर को हमेशा धर्मराज कहते, तो उसका नाम धर्मराज इसीलिए पड़ा क्योंकि धर्म धर्म माना धारणाएं। तो बाबा ने हम बच्चों को यही बताया है कि अगर आपको किसी का भी कल्याण करना है तो पहले आपको ईश्वरीय जो नियम ईश्वरीय जो आज्ञाएं हैं उनकी धारणा खुद को करनी पड़ेगी। देखो वैसा देखा जावे तो और स्कूल या कॉलेज में ऐसा होता है डिग्री लेने के बाद आप दूसरों को ज्ञान दे मतलब पढ़ा सकते हो, परंतु हमारा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा है आप पढ़ो भी और साथ में पढ़ाना भी चालू करो, दोनों बातें साथ साथ में ही होती है। पहले दिन से आप पढ़ा सकते हैं दूसरों को क्योंकि हमारे चार सब्जेक्ट है, मालूम है ना कौन से हैं? चार सब्जेक्ट क्या है हमारे? ज्ञान है, योग, धारणा और सेवा, ये चार सब्जेक्ट। अभी ये जो सेवा का सब्जेक्ट है, ये सेवा का सब्जेक्ट ये तो ठीक है ज्ञान बुद्धि में रखना चाहिए और योग बाबा से लगाना है, जीवन में धारणा ही करनी, पर तुरंत सेवा करने की क्या जरूरत है? ये सेवा का सब्जेक्ट जो है ये इसीलिए है कि हम जल्दी से जल्दी ज्ञान को धारण कर सके और निरंतर बाबा को याद कर सके, क्योंकि आप जब ही दूसरों को बैठ के समझाएंगे तो पहले तो हम खुद सुनते हैं ना, अभी मैं बोल रही हूं पहले मैं सुनती हूं, औरों को बोलेंगे बाबा को याद करो तो खुद को करना पड़ेगा, औरों को बोलेंगे तुम क्रोध नहीं करो तो खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हमारे को सेवा का सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम जल्दी नहीं सुधरने वाले, क्योंकि 63 जन्मों के हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं। परंतु जितना जितना हम सेवा में बिजी रहते हैं उतना उतना क्या होता है हमारे अंदर परिवर्तन आता है। हमारा विवेक हमको फटका मारता है कि आप दूसरों को तो समझा रहे हैं परंतु खुद की तरफ तो ध्यान दो। ऊपर से भले नहीं बोलता होगा वो व्यक्ति परंतु अंदर में समझता जरूर, औरों को बोलेगा पवित्र रहो तो पहले खुद को कंपलसरी उसको पवित्र रहना पड़ेगा, दूसरों को बोलेगा तुम सदा कुछ रहो तो पहले खुद का चेहरा उसको कुछ रखना पड़ेगा। अभी रोता हुआ अगर बोले तुम खुश रहो तो कौन मानेगा उसको, कैसा मानेगा? तो इसीलिए बाबा देखो हमेशा कहते हैं, बाबा कहते हैं सेवाओं के प्रकार हैं, तुमको हर प्रकार की सेवा करनी। मनसा के द्वारा हम औरों को शांति का दान दे सकते हैं, योग का दान देते हैं हम वो सेवा करते हैं, वाणी के द्वारा हम ज्ञान का दान देते हैं वो सेवा करते हैं, वाणी की सेवा, और कर्म के द्वारा हम गुणों का दान करते हैं। गुण वर्णन नहीं किए जाते, गुण जीवन में धारण किए जाते। धारण करने के बिगर कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए जो लौकिक परिवार वाले हैं वो ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते। आप उनको ज्ञान देंगे ना वो बोलेगे बस करो वो सुन लिया। अगर उनका उद्धार करना है तुमको चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा कहता है पहले घर वालों का उद्धार करो, परंतु उनका उद्धार करना है तो तुमको पहले प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा। जितना जितना हमारे जीवन में परिवर्तन देखते हैं उसके आधार पर उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो सबसे बड़ी सेवा जो है वो है कर्मों के द्वारा सेवा। तो हमको अपने कर्मों को परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि कर्म परिवर्तन हो गए तो क्या होगा, हमारे संस्कार परिवर्तन हो गए, संस्कार परिवर्तन हो गए तो सारा संसार परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए उसको हमारे को प्रैक्टिकल में बाबा जो भी हमें आज्ञा देता है उन आज्ञाओं पर हमें चलना है, और चल के अपने जीवन को परिवर्तन में ला करके सीख के पीछे दूसरों को सिखाना। आज भी बाबा बोल रहे थे तुमको बाबा को याद करना है औरों को कराना है, ऐसा नहीं सीधा बोला तुमको बाबा को याद करना है। आप एक एक बाबा की लाइन देखो, एक एक महावाक्य देखो, तुम्हें बाबा को याद करना है औरों को याद कराना है। माना पहले तुम खुद याद करो, तुम्हारे को याद रहनी चाहिए, फिर तुम दूसरों को बोलो तो उसको भी याद आ जाएगी। परंतु हमको अगर बाबा की याद नहीं है तो हम दूसरों को याद नहीं करा सकते। तो ये है रहम दिली। पहले तो खुद के ऊपर रहम करें हम। जब तक अपने ऊपर हम रहम नहीं करते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। जब हमारे ऊपर हम रहम करते हैं, हम सब धारणाओं को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तभी क्या होता है, हम औरों के ऊपर भी रहम कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे सर्व का भला करते चलो। कहते हैं ना, कर अपना एक गीत है, करते चलो सबका भला, यही है जीवन जीने की कला। औरों का भला करना माना तुम्हारा भला इसमें समाया हुआ है। तो इसीलिए हमारे को बाबा ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जिसके ऊपर इतना बड़ा काम होगा, आप बताओ, इतनी बड़ी ड्यूटी होगी, उसको फुर्सत मिलेगी फालतू बातों के लिए, फालतू सोचने के लिए? उसको तो फुर्सत ही नहीं होगी। कभी कोई कहते हैं अव्यक्त बाबा से, कभी कोई बाबा फालतू संकल्प चलते हैं। बाबा कहता है मैंने जो काम दिया वो पूरा हो गया तुम्हारा? बाबा पहले पर्सनल मिलते थे ना एक एक से, तो बाबा से पूछ, बाबा मेरे को ना बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको बाबा ने जो काम दिया है विश्व कल्याण का, वो पूरा हो गया क्या? फालतू संकल्प किसको चलते है? जो फ्री होता है, जिसको काम धंधा नहीं होगा वो फालतू संकल्प करेगा। तो तुम्हारे को तुम फ्री हो गए क्या कार्य करके? बाबा ने तुमको ऐसा काम दिया एक सेकंड भी तुम्हारे को फुर्सत नहीं है, क्योंकि मनसा के द्वारा सेवा कर सकते, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, जैसा चाहिए वैसा करो, क्योंकि हम सेवाधारी है। बाबा ने हम ब्राह्मणों को पैदा ही सेवा के लिए किया। तो जब है ही सेवाधारी तो सेवा कोई दो चार घंटे की नहीं होती है, सादा सारे जीवन की ये सेवा है। तो इसीलिए बाबा के हम सेवाधारी बच्चे हैं। सारे विश्व का कल्याण करना ये हमारा धंधा है। बाबा ने हमको धंधा दे दिया है, सारे विश्व का कल्याण करते चलो, बाबा का संदेश देते चलो, सर्व को सुख शांति दो और सारे विश्व को क्या करो, परिवर्तन कर डालो। तो अभी जब इतना बड़ा कार्य है तो हमें इस कार्य में बहुत बिजी रहना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और कार्य बहुत बड़ा है। तो थोड़े समय में ज्यादा कार्य करना होगा तो जरूर हमें अपने कार्य की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। और 24 घंटे से 25 घंटा तो होने वाला नहीं है, इसीलिए थोड़ा बाबा कहते हैं नींद के ऊपर थोड़ा विजय प्राप्त करो, नींद का समय भी सेवा में लगाओ। बाबा हम लोगों को हमेशा कहता था, बच्चे संगम युग पर आराम हराम, संगम युग पर आराम नहीं करना है, आराम सतयुग में जाके करना। आज जैसा कहा ना, सतयुग में जाके श्रृंगार करना, यहाँ श्रृंगार नहीं करना, तुम पियर घर में है, देखो कैसा समझाता है बाप बैठ के। तो वैसा ही कहता था, यहाँ आराम नहीं करना, आराम सतयुग में करना। अभी तो तुम्हें मेहनत करनी है और मेहनत करके सर्व का कल्याण करना है। ओम शांति।